ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में गृहमंत्री बालकृष्ण खांड ने राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश 2078 किया पेश। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के विरोध के कारण परसों शुक्रवार तक के लिए दोनों सदनों की बैठक हुई स्थगित। सदन संचालन के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के मिलकर आगे बढ़ने की बात पर प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउवा ने दिया जोर। कोविड महामारी के कारण स्थगित राष्ट्रीय जनगणना आगामी कार्तिक 25 अगस्त से होगी सुचारू। और भारतीय राज्य असम के जोरहाट में हुई नाव दुर्घटना में कम से कम 70 से अधिक लोग लापता। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अवरोध के बीच गृहमंत्री बालकृष्ण खांड ने राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश 2078 को पेश किया। इससे पूर्व एमाले सांसदों की नारेबाजी सहित अवरोध के कारण आज की बैठक दो बार 15-15 मिनटों के लिए सभामुख को स्थगित करनी पड़ी थी। प्रतिनिधि सभा के 9वें अधिवेशन की पहली बैठक के शुरू होते ही एमाले के सांसदों ने पार्टी के 14 सांसदों पर कार्रवाई के संदर्भ में सभामुख पर दल विभाजित करने जैसी भूमिका निभाए होने का आरोप लगाया। आरोप लगाने के साथ ही ये कहते हुए कि यथास्थिति में बैठक को नहीं चलने देंगे एमाले सांसदों ने उठकर विरोध जताया। विरोध के बावजूद सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ने अधिवेशन आह्वान संबंधी राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त पत्र को पढ़कर सुनाया था। एमाले सांसदों का अवरोध जारी रहते हुए ही सभामुख द्वारा एमाले के प्रमुख सचेतक विशाल भट्टाराय को बोलने का समय दिए जाने पर उन्होंने बोलना शुरू किया था। इस बात का जिक्र करते हुए कि विगत में दल के व्हीप की अवमानना करने पर जसपा सांसद सरिता गिरी और माओवादी केंद्र के 4 सांसदों को पदमुक्त किया गया, प्रमुख सचेतक भट्टाराय ने सवाल किया कि इस बार एमाले के 14 सांसदों द्वारा फ्लोर क्रॉस करने पर उन्हें पदमुक्त क्यों नहीं किया गया। उन्होंने सभामुख पर यह आरोप भी लगाया कि स्वयं सभामुख ही एमाले विभाजन में सभामुख ने भूमिका निभाई है। सभामुख के बार बार आग्रह करने पर भी नाराबाजी जारी रहने के बाद सभामुख ने 15-15 मिनटों के लिए दो बार बैठक को स्थगित किया था। बता दें कि प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में नेपाल नागरिकता पहला संशोधन अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाने संबंधी अध्यादेश, शपथ संबंधी अध्यादेश, रेलवे संबंधी अध्यादेश, औषधि तीसरा संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति के लिए पेश करने की कार्यसूची थी। इसी तरह बैठक में कोविड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा संबंधी अध्यादेश और सामाजिक सुरक्षा संबंधी पहला संशोधन अध्यादेश 2078 को पेश करने की अतिरिक्त कार्यसूची भी शामिल थी। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक भाद्र 25 गते शुक्रवार के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा की आज के लिए तय बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अवरोध के कारण स्थगित हो गई। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसदों की लगातार की नारेबाजी की वजह से बैठक अवरुद्ध होने पर राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा ने बैठक को स्थगित किया था। आज की बैठक की कार्यसूची में गृहमंत्री बालकृष्ण खांड द्वारा राजनीतिक दल संबंधी दूसरा संशोधन अध्यादेश 2078 प्रस्तुत करना था। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक भाद्र 28 गते शुक्रवार दोपहर 1 बजे होगी। प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउवा ने कहा कि सदन चलाने के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। संसद के 9वें अधिवेशन के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार में हुई सत्ता गठबंधन दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री देउवा ने ये बात कही। बैठक में उन्होंने सदन संचालन को सहज बनाने के लिए सत्ता गठबंधन के नेताओं से आग्रह किया। ये जानकारी नेकपा माओवादी केंद्र के नेता देवगुरू ने दी। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने बताया कि उन्होंने संविधान और कानून के आधार पर ही नए दल का पंजीकरण किया है। एक सवाल के जवाब में अध्यक्ष नेपाल ने कहा कि दल विभाजन किए जा सकने की कानूनी व्यवस्था और सर्वोच्च अदालत के पिछले फैसलों के नजीर के आधार पर वे आगे बढ़े हैं। उन्होंने पार्टी द्वारा उन पर प्रश्न उठाने और कार्यवाही किए जाने की मांग को अर्थहीन बताया। नेकपा एकीकृत समाजवादी ने संसदीय दल के विधान को पारित किया है। नेकपा संसदीय दल के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक ने विधान पारित किया। संसदीय दल का विधान पारित होते ही पार्टी ने गठित मसौदा कमेटी को विघटित किया है। इससे पहले पार्टी की संसदीय दल की पहली बैठक ने भवानी खापुंग, शेर बहादुर कुंवर, नीरा देवी जैरू, ठगेन्द्र प्रकाश पुरी और लक्ष्मी चौधरी की सदस्यता में मसौदा कमेटी का गठन किया था। नेकपा एमाले के उप महासचिव विष्णु प्रसाद पौड़ेल ने कहा कि एमसीसी के संबंध में पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एमसीसी का प्रस्ताव संसद में पेश करते ही एमाले अपनी धारणा स्पष्ट करेगी। प्रेस चौतारी नेपाल रूपंदेही द्वारा आज बुटवल में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप महासचिव पौड़ेल ने कहा कि एमाले राष्ट्रहित को केंद्र में रखकर जनता की चाह के मुताबिक ही फैसला लेगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हेलो, हाम्रो बिहेको सपिङको लागि आएको नि बाबा मम्मीसँग।
ए हो र, अनि मेरो लागि के किन्दैछौ?
बाबा मम्मी यति हुनुहुन्छ के सोच्नुहुन्छ होला उहाँले? मलाई त कस्तो लाज लाग्छ, भरे राति बोलौँ न ल।
अहिले फ्री वाइफाई छ क्या अफिसमा, बुझ न भरे कसरी गर्नु?
मेरो हुनेवाला श्रीमानज्यूलाई यति पनि थाहा छैन कि क्या हो? एनटीसी को अनलिमिटेड नाइट भोइस प्याक राति 10 बजे देखि बिहान 6 बजे सम्म।
अब रात तपाईको नेपाल टेलिकम राष्ट्रको
संचार। अब बाकी समाचार। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य ने आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है। मुख्यमंत्री शाक्य ने आज 6 मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया। मुख्यमंत्री शाक्य की सिफारिश पर प्रदेश प्रमुख यादव चंद्र शर्मा ने मंत्रियों राज्य मंत्रियों को नियुक्त कर पद तथा गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। आज नियुक्त हुए मंत्रियों में आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री रचना खड़का, आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री डॉ अजय क्रांति शाक्य, भौतिक पूर्वाधार उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मंत्री शांति प्रसाद पौडेल, सामाजिक विकास मंत्री विजयराज सुवेदी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री चंद्रबहादुर लामा और स्वास्थ्य मंत्री शामिल हैं। इसी तरह जीवन खड़का भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मंत्री, चुनेली श्रेष्ठ सामाजिक विकास राज्य मंत्री, सरस्वती बाटी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री और बद्री मैनाली भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। सरकार द्वारा बीते माघ से शुरू किए गए कोरोना के विरुद्ध टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,07,39,864 डोज वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुलाई गई प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ कृष्ण प्रसाद पौडेल ने बताया कि वैक्सीन का पहला डोज ले चुके लोगों की संख्या 56,83,061 है। वहीं 50,56,803 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। आज 1,23,286 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी। आज देशभर में कोरोना के 1,640 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,161 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। वहीं 10 संक्रमितों की मौत हो गई। संक्रमण के कारण देशभर में अब तक कुल 10,889 लोगों की मौत हो चुकी है। देशभर में होम आइसोलेशन और संस्थागत आइसोलेशन में कुल 29,479 सक्रिय संक्रमित हैं। इनमें से 488 मरीजों का आईसीयू में और 140 मरीजों का वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है। कोविड महामारी के कारण स्थगित की गई राष्ट्रीय जनगणना की मूल गणना का काम आगामी कार्तिक 25 गते से शुरू होगा। केंद्रीय तथ्यांक विभाग ने आज पत्रकार सम्मेलन कर ये जानकारी दी। विभाग ने 12वीं राष्ट्रीय जनगणना को सफल बनाने के लिए विभिन्न तहों में 1,711 प्रशिक्षक, 49,000 गणक और 8,500 सुपरीक्षक भेजने का निर्णय किया है। ये जानकारी राष्ट्रीय योजना आयोग के सचिव एवं प्रमुख तथ्यांक अधिकृत केवल प्रसाद भंडारी ने दी। उन्होंने सभी देशवासियों से इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य में सहयोग करने का आग्रह भी किया। विभाग ने मूल गणना से पहले भाद्र 20 गते से सुपरीक्षक की नियुक्ति, तालीम, घर और घर परिवार सूचीकरण, गणकों की नियुक्ति, इसके लिए आवश्यक तालीम, लगातार कार्यों की कार्यसूची भी सार्वजनिक की है। यातायात व्यवस्था विभाग ने चालक अनुमति पत्र के लिए तत्काल फॉर्म न खोलने का निर्णय किया है। इससे पहले फॉर्म डाले हुए करीब 6 लाख सेवाग्रही परीक्षा में सहभागी नहीं हो पाए हैं। इन परीक्षार्थियों की परीक्षा समाप्त होने के बाद ही फॉर्म खोले जाएंगे। ये जानकारी विभाग के प्रवक्ता डॉ लोकनाथ भूषाल ने दी। आज नेपाल में भी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस वर्चुअल माध्यम से मनाया गया। मानव केंद्रित पुनर्लाभ के लिए साक्षरता प्रविधि के प्रयोग में विद्यमान असमानता में न्यूनता के नारे के साथ ये दिवस मनाया गया। आज से नेपाली हिन्दू महिलाओं का परम्परागत हरितालिका तीज पर्व शुरू हुआ है। आज के दिन महिलाओं के आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और विभिन्न मिष्ठान्नों के साथ तर खाने का प्रचलन है। वहीं कल होकर अपने पति के सुस्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए पानी तक पिए बिना महिलाएं व्रत रखती हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के असम के जोरहाट में आज शाम ब्रह्मपुत्र नदी में 100 से ज्यादा यात्रियों को लेकर जा रही दो नाव आपस में टकरा गईं। हादसे के बाद 30 लोगों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। 70 से ज्यादा लोगों की तलाश की जा रही है, इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक नावों में करीब 25 से 30 बाइक भी रखी हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम में हुई नाव दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि यात्रियों को बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में गृहमंत्री बालकृष्ण खांड ने राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश 2078 किया पेश। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के विरोध के कारण परसों शुक्रवार तक के लिए दोनों सदनों की बैठक हुई स्थगित। सदन संचालन के लिए सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के मिलकर आगे बढ़ने की बात पर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने दिया जोर। कोविड महामारी के कारण स्थगित राष्ट्रीय जनगणना आगामी कार्तिक 25 गति से होगी सुचारू। और भारतीय राज्य असम के जोरहाट में हुई नाव दुर्घटना में 70 से अधिक लोग लापता। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार। शुभरात्रि।